ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा इस विद्यालय के साकार फाउंडर अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आप इस ईश्वरीय मार्ग पर चले और 1972 में जब आपने अपनी मैट्रिक एग्जाम पास की, अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। चूंकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, आरंभ में आपने सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं देते रहे। और 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, तो बाबा ने आपको वहां के लिए निमित्त बनाया। ज्ञान सरोवर में करीब 17-18 वर्ष रहकर जी जान से, दिल जिगर से आपने खूब सेवाएं की और 2010-11 के आसपास शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, तो बाबा ने वहां पर आपको निमित्त बनाया। तो वर्तमान में शांतिवन में रहकर सभी कैंपसेस में आप अपनी सेवाएं देते हैं। देश विदेश में भी ऑनलाइन ऑफलाइन सेवाएं चलती रहती हैं। मुख्य रूप से आप हमारे राजयोग की प्रशिक्षिका हैं, भट्टी की प्रशिक्षिका हैं, SML की प्रशिक्षिका हैं और जो हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और इसी हैसियत से आप पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं, कहीं राजयोग शिविर कराते हैं, कहीं भट्टियां कराते हैं, कहीं SML के कोर्सेज कराते हैं और कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम्स कराते हैं। हेडक्वार्टर में दादी रतन मोहिनी जो हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उनके ऑफिस का भी कारोबार गुप्त रीति से संभालते हैं। नीचे कन्याओं की टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है, उसका भी कारोबार आपके कंधों पर है। बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं और साथ साथ बहुत सारी प्रतिभाओं की धनी भी है। बहुत गहरा चिंतन चलता है आपका ईश्वरीय ज्ञान पर। और आज की जिन भाई बहनों ने मुरली सुनी, उनको पता है आज बाबा ने कौन से गुण पर कहा, गुण ग्राही बनने के लिए कहा है। तो गुण ग्राहकता एक बहुत अच्छा गुण है जो सचमुच हमें मानव से देवता बनाने में बहुत सहयोगी होता है। तो आज दीदी से हम सुनेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में गुण ग्राहकता को बढ़ाएं। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बार ओम शांति बोलने में ही पूरी तपस्या का ज्ञान आ जाता है। एक ओम शांति माना, बताओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पता है ना मैं कौन हूँ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, खुद को रियलाइज करना, यही तो भूल गए थे ना। हाँ, दुनिया भर की बातें पता थी लेकिन खुद को ही भूल गए थे। और अपने आप को भूले तो सब कुछ भूल गए। बाबा कहते ना, खुद को भूले तो पिता को भी भूल गए, घर को भी भूल गए, स्वधर्म स्वकर्म को भी भूल गए। तो परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, द्वापर युग से भूल गए। तो भूल पर भूल करने लगे, जीवन भूलों से भर गया। तो संसार भी क्या बन गया, संसार के खेल को क्या कहते, भूल भुलैया का खेल बन गया। पूरा संसार ही भूलों से भर गया, कलयुग बन गया। इस पूरी कलयुगी दुनिया को बदलने के लिए देखो, बाबा ने मूल कारण को पकड़ लिया और इसलिए पहला पुरुषार्थ बाबा ने सिखाया, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने मूल आत्मा स्वरूप को महसूस करते रहो, स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो। इसलिए रोज मुरली में बाबा सिखाते हैं, आत्मा अभिमानी बनो, यही सिखाते हैं ना। सुनने में सामान्य बात लगती है लेकिन ये मूल और मुख्य बात है कि ये जो देखने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं, वो शरीर है, मैं इससे अलग चैतन्य शक्ति हूं। इस हॉल में आप सभी बैठे हैं तो क्लियर है ना कि हॉल अलग है, हम अलग हैं। इस सोफा पर आप बैठे हैं, स्पष्ट है ना, सोफा अलग है, मैं अलग हूं। इस प्रकार बाबा कहते हैं, और गहराई से महसूस करो कि शरीर अलग है, तत्वों से बना है, मैं इनसे अलग आत्मा हूं, एक शक्ति हूं। तो जैसे ही आत्मा अपने आत्मा स्वरूप को भूल खुद को देह समझती है तो देह भान आने लगता है, और जैसे ही खुद को देह समझते हैं मन और बुद्धि दुनिया से अटैच होने लगते हैं। तो देखो, जब बॉडी कॉन्शियस बनते हैं तो बुद्धि देह के संबंध, देह की दुनिया, दैहिक क्रियाएं, सब भौतिक पदार्थ साधन में बुद्धि चली जाती, तो देह अभिमान में होते हैं तो अक्सर कौन से विचार चलते रहते हैं, कौन से विचार चलते हैं? तेरी मेरी, घर गृहस्थी, नौकरी धंधा, समाज संसार, वही बातें सोचते रहते हैं ना। इसलिए बाबा ने सहज तरीका हमें बताया कि अगर दुनिया भर के विचारों से मुक्त होना है तो सिंपल बात है, देह भान से न्यारे हो जाओ, बार बार खुद को आत्मा महसूस करो। ये हमारी पहली तपस्या है। हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हुए हर क्षण खुद को शरीर से अलग आत्मा महसूस करना। शरीर लौकिक है, आत्मा अलौकिक है, आत्मा अभौतिक है। शरीर भान में रहते हैं तो भौतिकता जीवन में आती है, इसलिए देह भान से न्यारा आत्मा भान में स्थित रहना है। ये हमारी पहली तपस्या है। प्रथम दिन से बाबा ने हमें ये सिखाया है। हमारा पहला पाठ कौन सा है? आत्मा का परिचय, ये हमारा पहला पाठ है ना। तो ऐसे नहीं समझना कि रोज बाबा अनेक बार ये बात कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। तो कई ऐसा समझते हैं कि ये मुरली की कॉमन पॉइंट है, पर ये कॉमन पॉइंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक नेचुरल आत्माभिमानी न बन जाए तब तक बाबा रोज बार बार याद कराते। भाई डायरेक्टर आपको कोई एक्शन सिखाता है, पर जब तक आप परफेक्ट ना करो तो वो क्या कहेगा? फिर से, फिर से, फिर से। तो बाबा भी रोज बार बार ये बात कहते हैं, क्योंकि हम संपूर्ण आत्मभिमानी नहीं बने। और जैसे ही आप देह भान से न्यारे होंगे, ऑटोमेटिक ड्रामा की हर सीन से आप साक्षी बनने लगे। और जीवन में ये अभ्यास बहुत जरूरी, ताकि अन्य बातों के विस्तार में न जाए, साक्षी होकर के देखा। आज तो यही जरूरी है ना। पहले माता पिता बहुत बच्चों में माथा मारते थे, पर आज के समय में, आज की जनरेशन को ये अच्छा नहीं लगता है। बार बार रोको टोको तो उनको पसंद नहीं आता है ना। और बच्चे मानते नहीं हैं तो फिर माँ बाप दुखी होते रहते। इसलिए साक्षी होना है। भले हमारे अंतर में सबके लिए शुभ भावना है, शुभ भावना रखनी है, परंतु अनावश्यक माथा नहीं मारना है, अनावश्यक बातों में नहीं जाना है। तो जितना देहभान से डिटैच होंगे, आप ड्रामा के हर सीन से साक्षी हो सके। तो ये तपस्या बहुत जरूरी। देहभान में आए, देह आकर्षणों में आए, इंद्रिय रसों में डूबे। आज मन और बुद्धि किस में बिजी हो गए, इंद्रिय रसों में डूब गए। देखने का रस, कोई जवाबदारी नहीं होगी, कोई कंसर्न नहीं होगा तो भी आंखें घूम जाती है, कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। तो ये व्यर्थ के विस्तार में बुद्धि जाती है ना। अब बाबा ने हमें सिखाया है हरेक को आत्मदृष्टि से देखना है। कहां देखना है? मस्तक में देखना है। इधर उधर देखेंगे तो बुद्धि और बातों में जाएगी। इनकी आंख टेढ़ी है, कान ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, ये तो सिंपल फ्लैट एरिया है ना, यहां देखना है। बाबा कहते हैं यहां देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो। इसलिए हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं, हर क्षण खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना है। वहां तो आप बिजी होते हैं अपने नौकरी धंधे में, घर काम में, वहां तो फुर्सत नहीं है, क्लास करते हैं और भागने लगते हैं। तो बाबा ने ये भट्टियों के प्रोग्राम बनाए कि मधुबन बेहद घर में आओ, आराम से रहो, ठीक से रहे हैं ना सभी? अच्छा लग रहा है कि बॉम्बे याद आ रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है ना बाबा का घर? हाँ, एक मेहमान बॉम्बे से आए थे परिवार सहित, ज्ञान सरोवर में ठहरे थे, तो वहां तो शहर से दूर है ना ज्ञान सरोवर, तो बिल्कुल शांति शांति, कैंपस खाली था, प्रोग्राम पूरा हो चुका था और बीच में 2 दिन का गैप होता है, उसमें वो आए थे। पर 2-4 घंटे के बाद कहे, नहीं नहीं बाबा, यहाँ तो हमें जरा नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांति शांति, कोई आवाज ही नहीं है। होटल में जाके रहे। जो रोज दौड़ते रहते हैं उनको शांति से बिठा दो तो ऐसा लग सकता है ना। तो आप सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा, तो यहाँ समय है, कोई भोजन नहीं बनाना, कोई नौकरी पर नहीं जाना, बाबा के घर में सारे प्रबंध तैयार मिलेंगे, तो समय किसमें देना है? योग तपस्या करनी, अभ्यास करना। क्योंकि जब तक देह भान से डिटैच नहीं होंगे, हम भौतिकता से अपने आप को डिटैच न्यारा नहीं कर सकेंगे। किसी को सुनने का रस है, कौन क्या बात कर रहे हैं, सुनने में इंटरेस्ट होता है। कोई बात सुनाते हैं तो आंखें भी खुली हैं करके, आंखें भी खुल जाती, कान भी सीधे हो जाते। तेरी मेरी दुनिया भर की बातें सुनने में तो कितनी अटेंशन रहता है, और ज्ञान की बात सुनाओ तो नींद करने लगते। तो अपने आप को चेंज करना है। आपस में मिलते हैं, चेक करो कौन सी बातें करते हैं, कौन सी बातें करते हैं? तेरी मेरी करते हैं ना, नौकरी धंधा समाज संसार की बातें करते रहे। अब बाबा कहते हैं, जिस कानों से भगवान के महावाक्य सुनते हो, उन कानों से व्यर्थ नहीं सुनना है। पसंद आएगा? अव्यर्थ नहीं सुनना है। बाबा कहते हैं, आपस में मिलते हो, पुरुषार्थ की बातें कर, ज्ञान की बातें कर, उन्नति की बातें कर। बोलने का रस, घर में अकेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बाबा की याद में बैठ सकते हैं ना, पर अंदर से राह देखेंगे कि कोई आवे तो बातचीत करे। कोई आवे तो बोले, बात करें। शांत नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए कईयों को भट्टी में घबराहट होती है, क्योंकि साइलेंस में रहना है ना। अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो, आपस में तो बात करते ही रहते हैं ना। तो ये इंद्रिय रस है, बोलने का रस, खाने का रस। बाबा कहते सारा दिन अंदर खाऊं खाऊं होता रहता है, ये खाएं वो खाएं, आकर्षण होता रहता है, खाऊं खाऊं खाऊं, ये बनाए वो बनाए। जीवन भर खाया है तो भी देखो खाने का रस। भक्ति में तो जीत नहीं सके, उपवास व्रत करते हैं तो भी ढूंढते रहते हैं, ये नहीं खा सकते हैं तो क्या खा सकते हैं। 50 फराली चीजें बना दी, लो भाई ये उपवास है। खाऊं खाऊं तो ढूंढते रहते हैं, बुद्धि तो रस और स्वाद से निकली नहीं। तो देखो बाबा ने तो बड़ा पक्का नियम बना दिया ना जीवन भर के लिए, कि तुम्हें कोई अशुद्ध भोजन खाना ही नहीं, किसी के घर भी नहीं, बाजार में भी नहीं, कहीं भी नहीं। शुद्ध सात्विक स्वच्छ शाकाहारी भोजन बाबा की याद में बनाना है, बाबा की याद में खाना है। पसंद है ये नियम? हाँ, देखो पावर से नहीं बोलते हो, क्यों भाई? हाँ, खुशी से बोलो। हाँ, भगवान जो कहे वो तो करना है ना। सबको निश्चय है ना हमें कौन पढ़ाता है? हाँ, शिव बाबा पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान देने के लिए बाबा आए हैं। रोज बाबा के सत वचन हम सुनते हैं, तो भगवान जो कहे वो तो करना ही है ना। कि नहीं करना है? करना है ना। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, हमें याद है आपस में बच्चे ऐसा खेल करते थे, पूछते थे कि भगवान तुमको कहे कि इतना मटका पानी पी जाओ तो पी जाएंगी? तो हम कहते थे हाँ, भगवान कहे तो पी जाऊंगे। फिर पूछते थे भगवान कहे इतनी मिर्ची खा जाओ तो खा जाएगी? हाँ, तो हम कहते थे हाँ, हम खा जाएंगे। शेर आ जावे तो भी नहीं डरेगी? तो हम कहते थे नहीं। अब जीवन में उस समय तो पता ही नहीं था कि सचमुच भगवान हमें मिलेगा और वो सन्मुख आके हमें कहेगा। तो बाबा ने जो कहा वो मुझे करना, ये हमारी लगन हो, निश्चय, उसी में हमारा कल्याण है। आज से 50 वर्ष पहले, नहीं 54 वर्ष पहले बाबा के ज्ञान में है। उस समय तो लोगों के गृहस्थी जीवन भी बहुत अच्छे थे, आहार विहार भी बहुत शुद्ध था। उस समय बाबा ने हमें कहा और तब से वो नियम पालन कर रहे, क्योंकि बाबा भविष्य को जानता था। आज 50 वर्षों के बाद आज के दुनिया की हालत हम देख रहे हैं, आज खाने जैसी कोई चीज नहीं रही है कि नहीं ऐसा? हाँ, हर चीज में, हर मसाले में मिलावट बनावट है, और हर मन में गंदगी है। आज क्या है, कितने विकारी मन बन गए, कितनी गंदी दृष्टि वृत्ति हो गई। पर बरसों से बाबा ने ये नियम का पालन, बाबा ने कहा, हम सब ने किया। आज हजारों चीजें दुनिया में मिलती है पर कोई अट्रैक्शन नहीं, बाबा ने हमें सेफ कर दिया। आपको पता है ना, खाने खिलाने के नाम पर बेहोश कर देते हैं और लूट के चले जाते हैं। ट्रेन्स में कितनी घटनाएं होती। इसलिए बाबा कल्याणकारी, जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि का नियम बहुत जरूरी। हम ही कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम चाहते हैं अपने मन बुद्धि संस्कार को पूर्ण शुद्ध बनाना है तो हमें अन्न शुद्धि का नियम जरूर पालन करना चाहिए, नहीं तो जिसका खाएंगे उसी के गीत गाएंगे। कोई किसी के प्रभाव में बहुत चलते हैं तो कहते हैं ना, इसको कुछ खिला दिया है, इसको कुछ पिला दिया है, हाँ ये उसी के गीत गाता है, ये उसी के प्रभाव में चलता है। तो हमारी सेफ्टी के लिए बाबा ने ये अन्न शुद्धि का नियम दिया है। शुद्ध भोजन खाओ, सात्विक भोजन खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ, खुद बनाओ और बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। अगर अपने मन बुद्धि संस्कार को सात्विक बनाना है तो मैंने देखा बाबा ने जो नियम मर्यादा सिखाई है वो कल्याणकारी। हम रोज क्लास करते हैं बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं, तो जो बातें मन में भरेंगे वही चिंतन में आएगी। तेरी मेरी दुनिया भर की बातें बुद्धि में भरेंगे तो उसी पर चिंतन चलेगा, और जिस बात का मन में चिंतन चलेगा मुख से वो ही वर्णन होता रहे, है कि नहीं? फिल्में देखते हैं तो देखो एक्टरों जैसी चाल चलने लगते हैं, उनके जैसे बाल रखने लगते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे डायलॉग बोलने लगते हैं। जो देखेंगे उस पर चिंतन तो चलेगा ना, प्रभाव पड़ेगा ना। अगर हमें कैसा बनना है, आपने किसको रोल मॉडल बनाया है, किसके जैसा बनना है? हमें तो ब्रह्मा बाप जैसा बनना है, शिव बाबा जैसा बनना है ना। तो हमें रोज बुद्धि में बाबा का ज्ञान भरना चाहिए। सुबह सुबह बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करेंगे तो मन को एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगा, सही दिशा में मन और बुद्धि चलेंगे, हमारा चिंतन श्रेष्ठ बन जाएगा। देखो आज बाबा ने क्या कहा, तुम आपस में भाई भाई हो, एक बाबा के बच्चे हो, तुम्हारा आपस में रूहानी प्यार रहना चाहिए। सबके गुणों को देखना है और सबसे गुण उठाना है। अब सुबह सुबह ये बात हमने सुनी तो सारा दिन अटेंशन रहेगा ना। पहले एक दो की कमजोरियां देखते थे, अब जब खुद देखेंगे मन में वो बात भरेंगे, एक की एक कमजोरी, पर हमने तो हरेक की कमजोरी देखी तो हमारा मन तो किससे भर जाएगा, कमजोरियों से भर जाएगा। भाई इसकी एक कमजोरी, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, पर सबकी मिला के मेरा मन तो क्या बन गया, डस्टबिन, कचरे का डिब्बा बन गया। तो सबसे पहला नुकसान किसको हुआ, खुद को ही हुआ ना। और दूसरों की कमजोरियां देखने में लगे रहेंगे, इसका अर्थ है खुद को तो भूल ही गए, खुद में भी तो कमजोरी है, हम भी तो संपूर्ण नहीं है ना। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा है, कैसा है, टेढ़ा है, बांका है, बेकार है, औरों के लिए जब सोचते हैं, क्योंकि उनके अवगुण बुद्धि में आ गए ना, उनकी भूलें बुद्धि में आ गई, तो हम दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं, मीन्स उस समय हम खुद को भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे में भी तो कोई ना कोई कमी है, और औरों की कमजोरियां देखेंगे तो हम तो और ही अवगुणों के भंडार बन जाएंगे। प्राइमरी में पढ़ते थे तो ये काव्य आता था, कवि ने सिंबॉलिक काव्य लिखा था कि एक ऊंट कहता है कि तोते की तो चोंच टेढ़ी है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, हिरन के तो सिंग टेढ़े हैं, ऐसे करके वो सबकी कमी की बातें बताता है। तो लास्ट में कवि उसको कहते हैं कि दूसरों का तो एक एक टेढ़ा है ना, पर हे ऊंट भाई तुम्हारे तो सारे के सारे अंग टेढ़े हैं। तो ये बात अपने जीवन से लगती है ना, कि स्वदर्शन करके खुद को ठीक करने के बजाय हम दूसरों की कमी कमजोरियां देखते हैं और कमी कमजोरियों के भंडार बनते जाते हैं। खुद को देह समझते रहे, देह को देखने का अभ्यास है, आईना देखा नहीं और अपने आप को ठीक ठाक करने लग जाते हैं, देखने लगते हैं, होता है कि नहीं। अब तो अपने पर्स में ही आईना रखते हैं और मेकअप बॉक्स भी रखते हाँ खुद को देखते हैं, शरीर को बाल ठीक करेंगे, गाल ठीक करेंगे, वो अभ्यास है। अब बाबा ने हमें सत्य परिचय दिया ना कि हम केवल शरीर नहीं है, हम कौन है, आत्मा है। तो हमें अपने आप को देखना है कि मेरे विचार कैसे हैं, इच्छाएं कैसी हैं, मेरे बोल कैसे हैं, कर्म कैसे हैं। हमें आत्मा दर्शन करने का अभ्यास, देखेंगे तो खुद को ठीक करेंगे ना, कि भाई मेरे में ये अवगुण है वो ठीक बात नहीं, मुझे अपनी दृष्टि अच्छी बनानी है, वृत्ति शुद्ध बनानी है। वाणी के लिए तो बाबा कितना सिखाते, किसको याद है तीन बातें, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सार रूप बोलो। बहुत लंबी बातों का विस्तार नहीं करो, इसमें भी तो एनर्जी जाती है। तो खुद पर अटेंशन बहुत जरूरी, और जब खुद अच्छी शुद्ध शांत पवित्र सत्य आत्मस्थिति में स्थित होंगे तो आपको ऑटोमेटिक दूसरे के भी गुण नजर आएंगे, दूसरे की अच्छाइयां नजर आएंगी। जब मेरी अपनी मनोस्थिति आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो मुझे दूसरे में भी अच्छी बातें ही दिखेगी। दूसरे के गुण देखते देखते हमारे में और अच्छे गुण आते जाएं। इसलिए देखो आज पूरी मुरली में बाबा ने कहा कि जब तुम शुद्ध थे, सतो प्रधान थे, देवता थे, तो तुम किसी की कमी नहीं देखते थे, बहुत प्यार से रहते थे। सतयुग के बारे में तो जानते हो ना, मनुष्य की बात नहीं, सतयुग में तो और कौन प्यार से रहते, जानवर भी प्यार से रहते। सतयुग का गायन क्या है, शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। ये कहने का मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट नेचर वाले, गाय कितनी सीधी सादी और शेर कितना हिंसक, अपोजिट नेचर वाले भी मिलके चलते थे। तो हमें क्या सीखना है, हमें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान माना सप्त प्रधान, आत्मा के सात गुणों से भरपूर आत्म स्थिति को सतो प्रधान स्थिति कहते। आत्मा के मूल सात गुण धर्म कौन से है, हाँ, ये हमारे असली गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये हमारे मूल सात गुण धर्म है। हम रोज साइलेंस में बैठकर, जब आप योग में बैठते हैं तो साइलेंस में बैठकर सेल्फ को रियलाइज करते हैं कि मैं आत्मा ओरिजिनली पूर्ण शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र सत्य आत्मा हूं। ये रिपीट नहीं करना है, रियलाइज करना है, महसूस करना है कि मेरे में ओरिजिनली कोई विकार थे ही नहीं, तो अब क्यों मेरे में रहे। लक्ष्य बनाओ सभी। बाबा ने बताया पर हमने लक्ष्य बनाया कि मुझे ऐसा बनना ही है। अगर सात गुणों का स्वरूप बनेंगे तो ऑटोमेटिक सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, देवता बनना माना क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न बनना। 32 गुण, 36 गुण, 56 गुण, जितने भी दिव्य गुण हैं, वो इन सात गुणों का ही कॉम्बिनेशन है। समझा? वो इन मूल सात गुणों का ही कॉम्बिनेशन। जानते हो ना सभी की मूल रंग है, मूल रंग है तीन, लाल, पीला और नीला। इस तीन रंग से आज 150 से भी अलग अलग कलर बने, इतने कलर शेड्स बने, पर मूल तीन गुणों से, तीन रंग से। ऐसे हम आत्मा के मूल सात गुण हैं। रोज लक्ष्य रखो इन गुणों का स्वरूप बनकर मुझे हर कर्म करना है। तो ये सात गुणों की धारणा से सर्व गुण ऑटोमेटिक विकसित हो जाए। देखो कितना सहज पुरुषार्थ बाबा ने सिखाए। दूसरी महिमा क्या है देवता बनने की? देवता की दूसरी महिमा बताओ, 16 कला संपूर्ण बनना। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, है ना लक्ष्य? जिस विद्यालय में रोज पढ़ते हैं हम, हमारा लक्ष्य क्या है? पक्का है ना? मेडिकल कॉलेज में रोज पढ़े, इतनी हाई लेवल की पढ़ाई करें, खर्चा करें, और स्टूडेंट लक्ष्य बना लें कि भाई कोई बात नहीं, कंपाउंडर बन जाएंगे, है? तो ये ठीक है? भाई तुम्हारे माँ बाप कितना खर्च कर रहे हैं? तुम्हारे प्रोफेसर कौन सी पढ़ाई तुमको पढ़ा रहे हैं? कंपाउंडर बनना है? तो बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे? मनुष्य से देवता बनने। देवताओं में भी बाबा तो कहते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। तो ऐसा बनना माना प्रैक्टिकल क्या बनना है? पता है ना देवता बनना माना कोई ऐसे ही ताज और कपड़े पहनने की बात नहीं है। कितना योग्य बनना है? तो सर्व गुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण, मीन्स हर कर्म विधि पूर्वक करना, परफेक्ट। 16 कला माना परफेक्शन की बात है। कोई सर्वांग सुंदर है तो कहेंगे ना भाई ये तो 16 कला सुंदर है, पूरी बात सच है तो कहते ना भाई, मैं कहता हूं ना ये 16 आनी सच बात है। तो 16 कला संपूर्ण बनना इसका अर्थ है हर कर्म यथार्थ विधि पूर्वक करना, और उसके लिए बाबा सिखाते हैं कि अगर संगम युग में बुद्धि योग की कला को विकसित कर लेंगे वो अपने आप 16 कला संपूर्ण बन जाए। बुद्धि ठीक हो जाएगी तो कर्म तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो बाबा कौन सी बुद्धि योग की कला कहते हैं, जब चाहो जहां चाहो जितना समय चाहो उस ऊंची स्थिति में बुद्धि को स्थित कर सको, ये है बुद्धि योग की कला। बाबा कहते हैं ना अंत में सेकंड का पेपर होगा, एक सेकंड में जिस स्थिति में चाहे जितना समय चाहे जिस अवस्था में स्थित करना चाहे स्थित कर सके, उसके लिए आवश्यक है रोज अभ्यास करें। यहां से सेकंड में बुद्धि को न्यारा करें, सेकंड में बुद्धि को परम धाम ले जाएं और बाबा के सामने प्यार से एकाग्र होकर बैठ जाए, ये प्रैक्टिस कर दी। जितना अभ्यास करेंगे उतनी एकाग्रता आती जाएगी, बाबा की याद से बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, सत्य बनती जाएगी, तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ बन जाए। कहते हैं ना बुद्धि ही इसकी भ्रष्ट हो गई, बुद्धि ही बिगड़ गई है इसलिए आज सब कुछ बिगड़ गया है ना। बाबा मन बुद्धि को ही तो शुद्ध और एकाग्र कर रहे हैं। और तीसरी महिमा कौन सी है देवताओं की, संपूर्ण निर्विकारी बनना। कितना ऊंचा लक्ष्य बाबा देते, विकार का अंश भी न रहे, ये हरेक को लक्ष्य बनाना है। ऐसे ये धारणाएं नहीं होंगी, ये समय है बाबा हम बच्चों को इतना महान बना रहे। परसों संडे की मुरली में क्या कहा बाबा ने कि खुद खुद पर स्ट्रिक बनो, आप स्ट्रिक नहीं बनेंगे तो बाबा को बनना पड़ेगा। कहा है ना बाबा ने, तो हरेक लक्ष्य रखो, कोई भी विकार का अंश मुझ में न रहे। ऐसे तो नहीं समझते हो ना काम क्रोध तो खराब विकार है, लोभ मोह तो अच्छे हैं, ऐसे तो नहीं सोचते हो ना। विकार माना विकार, हर विकार आत्मा को गिराने वाला है। अगर सभी विकारों के अंश वंश को खत्म करना चाहते हैं तो कौन सी साधना चाहिए? देही अभिमानी बनना पड़े। देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। जितना देही अभिमानी बनेंगे न्यारा और प्यारा बनते जाएंगे। कोई विकार का अंश न है, क्योंकि विकार ही तो दुख देते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं। देखो, गंदी नजर से आप किसी को देखेंगे, किसी को अच्छा लगेगा? अपवित्रता नहीं चाहिए जीवन में। आप गुस्सा करते हैं, दूसरे को अच्छा लगता है? आप पर कोई गुस्सा करे अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो फिर ये चीज मुझे क्यों रखनी? मुझे सात गुणों का स्वरूप बनना। तो ये पांच विकार अपने आप खत्म होने लगे। पर लक्ष्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम, चौथी महिमा यही है ना देवताओं की। अमृत वेले से लेकर रात सोने तक हर क्रिया कर्म की बाबा ने मर्यादा बताई। जो अपनी दिनचर्या को योगी जीवन की दिनचर्या बनाएगा उनका दिन सफल, रोज सफल, जीवन सफल। देखो, 5000 वर्ष का ड्रामा आपको सफल करना है तो क्या करना है? संगम युगी ब्राह्मण जीवन को सफल करना। संगम युग जिसका सफल, उसका पूरा ड्रामा सफल। क्योंकि संगम युग का ही रिजल्ट सतयुग और त्रेता युग है। सतयुग और त्रेता युग की प्रारब्ध का आधार क्या है? संगम युग का जीवन, प्रैक्टिकल अभी करना है। तो दो युग सफल, द्वापर युग, कलयुग उसके यादगार रीत रस्म में है। उसमें तो हम भटकते हैं, भक्ति में रीत रस्म करते रहते हैं। और संगम युगी ब्राह्मण जीवन अगर आपको सफल करना है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रोज की दिनचर्या सफल कर, रोज सफल, जीवन सफल, ड्रामा सफल। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक जो बाबा ने कहा है उस दिनचर्या में चलना। और पांचवी बात देवताओं की महिमा में कौन सी? डबल अहिंसक। अहिंसा परमो धर्म, डबल अहिंसक। तो बाबा कहते हैं डबल हिंसा कौन सी? बाबा ने बताई काम कटारी नहीं चलानी है, मीन्स जीवन में कंप्लीट पवित्रता धारण करनी है, क्योंकि काम विकार आत्मा का घात करता है ना, उसकी ओरिजिनल पवित्र स्टेज को खत्म करता है। और दूसरा बाबा ने कहा है, बताओ, किसी को दुख नहीं देना है, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। जो ये लक्ष्य बना लेगा और उस लक्ष्य को सिद्ध करने के पुरुषार्थ में लगा रहेगा, वो न व्यर्थ देखेगा, बोलेगा, न सोचेगा, न करेगा, उसको फुर्सती नहीं। ठीक है, पसंद है कि मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लगता हो तो बाबा को बताना, बाबा मदद करेंगे। पर आपकी दिल सच्ची होनी चाहिए कि भगवान जो कहते हैं वो मुझे करना ही। ओम शांति।